नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियाँ, देश दुनिया की बड़ी खबरें। जयंत चौधरी भी राज्यसभा जाएंगे, वह वहाँ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साझा उम्मीदवार होंगे। गुरुवार को ये जानकारी सपा के ट्विटर हैंडल से दी गई। बताया गया, जयंत सपा और रालोद से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते समय जयंत ने अखिलेश से उन्हें राज्यसभा भेजने की मांग की थी। जयंत चाहते थे कि विधानसभा चुनाव के बाद वे सपा के सहयोग से राज्यसभा जाएं। आने वाले राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से 7 सीटों पर भाजपा की और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 11वीं सीट के दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला तय माना जा रहा है। जयंत के अलावा समाजवादी पार्टी ने 2 अन्य सीटों पर कांग्रेस से सपा में आए नेता कपिल सिब्बल और रामगोपाल यादव के करीबी माने जाने वाले जावेद अली खां को अपना उम्मीदवार बनाया है। ईडी ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत राज्य में बृहस्पतिवार को कई स्थानों पर छापे मारे। संघीय एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत एक ताज़ा मामला दर्ज किया है। मुंबई में अनिल परब के आधिकारिक आवास, दापोली और पुणे में संबंधित परिसरों समेत कम से कम 7 परिसरों पर एजेंसी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मुहैया कराई गई सुरक्षा के साथ छापेमारी कर रही है। ऐसा समझा जाता है कि छापेमारी के दौरान मंत्री अपने आवास पर मौजूद थे। 3 बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित परब राज्य के परिवहन मंत्री हैं। उनके खिलाफ अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं और ऐसा समझा जाता है कि निदेशालय का ताज़ा मामला इन्हीं आरोपों पर आधारित है। ईडी की कार्रवाई दापोली में 2017 में परब द्वारा 1 करोड़ रुपए के प्रतिफल मूल्य पर एक भूखंड की खरीद संबंधी आरोपों से जुड़ी है। कांग्रेस नेता एवं सांसद कार्ति चिदंबरम 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित एक कथित घोटाले की जांच में सहयोग के लिए बृहस्पतिवार को सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। जब ये कथित घोटाला हुआ था उस समय कार्ति के पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। उच्चतम न्यायालय और सीबीआई की विशेष अदालत की अनुमति से ब्रिटेन और यूरोप की यात्रा पर गए कार्ति को विशेष अदालत के आदेश के अनुसार वापस आने के लिए 16 घंटे के भीतर सीबीआई जांच में सहयोग के लिए पेश होना था। सांसद बुधवार को यात्रा से लौटे। वह मामले से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बृहस्पतिवार की सुबह सीबीआई कार्यालय पहुंचे। कार्ति ने सीबीआई मुख्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उनके खिलाफ मामला फर्जी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी चीनी नागरिक को वीजा दिलाने में कोई मदद नहीं की। 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके बाद क्रिकेटर से कमेंटेटर और नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू अब पटियाला सेंट्रल जेल में क्लर्क के तौर पर काम करेंगे। दरअसल सिद्धू की सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया है कि सिद्धू पटियाला जेल में जेल के दफ्तर का क्लरिकल काम देखेंगे। बता दें कि पटियाला जेल में सिद्धू के पास जेल कार्यालय का कामकाज होगा। गौरतलब है कि 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को 1 साल की जेल हुई है। वहीं जेल के भीतर सिद्धू की सुरक्षा भी जेल प्रशासन के लिए एक चुनौती है। ऐसे में सिद्धू को कोई और काम ना देते हुए प्रशासन ने लिपिकीय जिम्मेदारी दी है। 58 साल के सिद्धू के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें फैक्ट्री में काम नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर पटियाला जेल अधीक्षक मनजीत सिंह टिवाड़ा का कहना है कि सिद्धू पढ़े लिखे हैं, साथ ही जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर भी किसी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता। ऐसे में फैसला लिया गया है कि उन्हें पूरी सजा के दौरान क्लर्क का काम करना होगा। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2628 नए मामले सामने आने से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,31,44,820 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 15,414 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 18 और मरीजों के महामारी से जान गंवाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,525 हो गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 443 की वृद्धि दर्ज की गई। संक्रमण की दैनिक दर 0.58% दर्ज की गई और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.51% रही। यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। इन राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च अप्रैल 2022 में किया गया था। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। दोनों राज्यों में बोर्ड परीक्षा का आयोजन कोरोना सुरक्षा दिशा निर्देश के तहत किया गया था। सभी परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया था। परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई थी। यूपी बोर्ड इस बार 10वीं और 12वीं का रिजल्ट छात्रों के मेल आईडी पर भी भेजेगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट की डेट कभी भी जारी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2022 और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2022 जून में घोषित किया जा सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।